ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए चालू वित्त वर्ष के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह में बढ़ोतरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक SP शर्मा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
श्रोताओं नमस्कार। प्रत्यक्ष कर संग्रह में चालू वित्त वर्ष में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि हम आंकड़ों पर ध्यान डालें तो प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में लगभग 20% बढ़ा है। 17 मार्च तक 18.90 लाख करोड़ रुपए इस वर्ष संग्रहित हो चुके हैं अब तक, जबकि कुछ दिन अभी वर्तमान चालू वित्त वर्ष के बचे हुए हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि प्रत्यक्ष कर में ये जो बढ़ोतरी हुई है उसके मुख्य कारक क्या है। प्रत्यक्ष कर में जैसा कि आप जानते हैं कई सारे कर आ जाते हैं जिनको प्रत्यक्ष कर के दायरे में रखा जाता है। हम इस विषय पर आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं देश के जाने माने आर्थिक मामलों के जानकार डॉक्टर SP शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
जी शुक्रिया।
डॉक्टर शर्मा, सबसे पहला तो सवाल यही है कि 17 मार्च तक लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है प्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले वित्त वर्ष इसी अवधि की तुलना में, तो कुल मिला के हम क्या माने कि ये जो बढ़ोतरी हुई है इसके पीछे मुख्य कारण क्या सब रहे होंगे?
देखिए, सबसे जो मुख्य कारण है वो हमारी जो इकोनॉमी है उसकी रफ्तार है। अगर हम अपना इंडिया का ग्रोथ रेट देखें तो बहुत तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जो हम देखते हैं कि IMF के अनुसार हम टॉप 10 जो मेजर इकोनॉमीज है उनमें सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, और पैंडेमिक में पोस्ट पैंडेमिक ईयर्स में अर्थव्यवस्था में बहुत तेज गति से विस्तार हुआ है। जैसे कि हमने देखा कि पैंडेमिक के इमीडिएट बाद 2021-22 में लगभग कोई 9.2% पे ग्रो किया, उसके बाद 7.2% पे ग्रो किए, और इस साल के सिर्फ जो आंकड़े हैं वो अभी हमने जो NSU का स्टेटिस्टिक्स देखा है उसके अनुसार हमारी जो ग्रोथ है लगभग कोई 7.5% से भी ऊपर रहेगी। इवन के RBI तो लगभग कोई 8% के आसपास की ग्रोथ रेट को देख रहा है। बढ़ती हुई रफ्तार से लोगों के जो इनकम लेवल्स हैं और लोगों का जो टैक्स पेइंग कैपेसिटी है जिससे वो एक ऐसा रेशनल उसमें समझते हैं कि टैक्स पेयर का भी बढ़ना आगे और टैक्स बेस भी बढ़ना, तो दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं, जिस वजह से जो बढ़ोतरी है निरंतर हो रही है। और जैसे आपने बताया कि लगभग कोई 18,90,000 करोड़ का जो है हुआ है अपना इस बार संग्रह हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 15,17,000 करोड़ से ऊपर इंक्रीज हुआ है, लगभग कोई 20% की बढ़ोतरी। तो लोगों का इनकम लेवल्स एक्सपेंड हो रहे हैं, क्योंकि जब हमारा GDP एक्सपेंड होता है तो उस तरीके से हमारे जो इनकम्स हैं लोगों के, जो पर कैपिटा इनकम है जो लोगों का नॉमिनल बेसिस पे और जो रियल बेसिस पे दोनों इनकम इंक्रीज होते हैं। जैसे हम रियल GDP में लगभग कोई 7.5% से कोई 11.5% का GDP बन जाता है, जिससे कि जो करंट प्राइसेस के ऊपर जो इनकम्स है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि जो टैक्सेस है वो आपकी जो इनकम है उसके ऊपर देखा जाता है, जो करंट प्राइसेस के ऊपर है, जो आपकी एक्चुअल इनकम है अभी जो आप ले रहे हैं, तो उसके अनुसार ही टैक्स कलेक्शन है उसी तेज गति से बढ़ रहे हैं। और दूसरा, जो अर्थव्यवस्था की गति से भी तेज गति से जो डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं उसका कारण है टैक्स बेस बढ़ना, ज्यादा टैक्स पेयर का उस दायरे में आना, वो इससे दर्शाता है कि लोगों का जो टैक्स बेस है वो भी साथ साथ में इंक्रीज हो रहा है। वो उसके ऊपर जो खास करके जो सिंप्लिसिटी हुई है, जो टैक्स पे करने के लिए जो पहले कॉम्प्लिकेशन थी उनमें काफी सुधार आया है, तो जिस वजह से जो टैक्स बेस है वो भी साथ साथ इंक्रीज हो रहा है।
यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, यदि हम बेस की ही बात करें तो टैक्स बेस के दायरे में यदि किस प्रकार के लोग आ रहे हैं, जिनकी आय कम है, नौकरी पेशा लोग हैं या कारोबारी हैं, किस तरह के लोग कर देने के लिए सामने आए हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करके आप स्पष्ट कर सकेंगे?
जी बिल्कुल। पहले जैसे सैलरीड क्लास को पता है कि शुरू में ही टैक्स जो है वो डिडक्ट हो जाता है, सैलरीड क्लास को एक बाय डिफॉल्ट एक टैक्स पेयर में रहता है, तो इसके अलावा जो बिजनेसेस हैं खास करके जब उन्होंने सरलता देखी और खास करके जो उनका जो रुझान हुआ है जब वो फाइनेंशियल एसेट्स के साथ अटैच हुए हैं, जैसे हमने देखा कि जो डीमैट अकाउंट्स हैं बहुत इंक्रीज हुए हैं, ऑन एन एवरेज जो रिटेल ट्रांजेक्शन हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, तो कुल मिला के जो, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्सेस है उनके ऊपर आपका जो पर्सनल इनकम टैक्स के अलावा जो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स है, एसटीटी है, वो भी आ जाता है। तो कुल मिला के जो लोगों का एक्सपोजर है, खास करके जो फाइनेंशियल एसेट के साथ हुआ है, खास करके पहले जब लोग एक क्लोज उसमें थे, जो रेस्ट्रिक्टेड दायरे में जो ज्यादातर इनकम टैक्स होता है, इनकम के ऊपर ही आता था ज्यादातर जो मेन उसका प्रपोर्शन होता था, उसके बाद जैसे वो फाइनेंशियल एसेट के साथ जुड़ रहे हैं और ऑरिजिनल सेक्टर में आ रहे हैं, तो मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप्स भी जब उनका टैक्स किसी ऐसे फाइनेंशियल एसेट में करते हैं, जब उनका कोई कुछ कैपिटल गेन होता है या फिर वो ट्रांजेक्शन करते हुए अपना टैक्स पे करते हैं, तो उसके हिसाब से जो ओवरऑल टैक्स मोमेंटम है उसका जो बेस है वो विस्तार में आया है पिछले कुछ वर्षों में।
यहाँ पर एक हमारे श्रोता बहुत आसानी से समझ सकें वैसा सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों में अंतर हम किस बात से समझें?
देखिए, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, आपका जो निजी इनकम है, जो आप
यानी आपकी इनकम आमदनी है, आय
सीधी आमदनी है, जो या तो कंपनीज अपने बिजनेस करके उसके ऊपर प्रॉफिट लेती हैं, जैसे कॉरपोरेट टैक्स पे करती हैं कंपनीज, और हम अपना इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं, मान लीजिए कोई सैलरीड आदमी है वो अपना टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें जो डायरेक्ट टैक्सेस में, प्रत्यक्ष कर में जो आप कह रहे हैं, तो उसके दायरे में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपको डायरेक्ट नहीं पे करना पड़ता, जो कि आपको वस्तुओं के ऊपर देना पड़ता है, जो आपके सामने सीधे तौर पे विजिबल नहीं है, वो आप इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं, आप कोई सामान खरीद रहे हैं और उसके ऊपर जो जीएसटी है वो लगा हुआ है। पहले वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जिसमें बहुत सारे टैक्सेस होते थे, जिसमें सारा 18 जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, अलग अलग वो प्रकार के टैक्स लिखे होते थे कि इतना परसेंट जिसमें ये है इतना, फिर खाली एक जीएसटी आने के बाद एक सिंपल टैक्स जो था वो दर्शाया जाता है कि इसके ऊपर इतना जीएसटी है, इसके ऊपर 11% जीएसटी है या 18% जीएसटी है या 5% जीएसटी है, वो सीधा उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, या फिर कोई सर्विस सेक्टर का ट्रांजेक्शन है तो उसमें सीधे तौर पर बताया जाता है कि इतने का यह ट्रांजेक्शन है प्लस इतना परसेंट इसमें जीएसटी लगेगा, तो कुल मिला के जो राशि है वो जीएसटी को मिला के बन जाती है। तो वो हो गया एक इनडायरेक्ट, जो आप सीधे तौर पे सरकार को नहीं पे कर रहे वो सीधा जो है वो उसमें जा रहा है, इनडायरेक्टली जो है उपभोक्ता के ऊपर लग रहा है लॉटरी दे जाके। तो प्रोड्यूसर ने पहले सामान प्रोड्यूस किया, उसके बाद होलसेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास गया, फिर उपभोक्ता के पास किया, तो उसमें कई स्टेजेस आते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि डायरेक्ट टैक्सेस में सीधे तौर पे एक बहुत ही अपेरेंट होता है, जिसको जो भी अर्न कर रहा है, जो भी जिसकी इनकम है, उसको सीधे तौर पे पता होता है कि वो कितने परसेंट जो टैक्स ब्रैकेट है उसमें आता है, वो उसको कितना रिबेट मिलता है। जैसे बहुत सारे रिबेट्स भी हैं, अगर वो हाउसिंग में इन्वेस्ट करता है या फिर उसका जो दूसरे इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक जो प्रोविडेंट फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट है, या फिर वो फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करता है, तो कुछ जो रिबेट्स हैं वो इनकम टैक्स के उसमें रहते हैं, उन सब चीजों के कैलकुलेशन के बाद फाइनली उसको कितना टैक्स पे करना पड़ता है, उसको वो बड़ा अपेरेंट एक फिगर सामने होता है कि मैं इतने टैक्स के दायरे में आता हूं, मैं 10% में आता हूं या 20% या 30% में, तो उसको ये ज्ञात होता है। मतलब उसके सामने ये नहीं है कि उसको कुछ पता नहीं है, तो वो जो व्यक्ति है जो टैक्स पेयर है उसके सामने सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली जो कानून के मुताबिक जो इनकम टैक्स रूल है उसके अनुसार सब चीजें उसको मालूम होती है, उसी के अनुसार भी वो अपना टैक्स पे करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कई बार इनकम होने के बाद की जाती है, कई बार नोशनल इनकम जो होने वाला है, कई बार एडवांस टैक्स दिया जाता है, जैसे इस बार जो एडवांस टैक्स है उसमें भी काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, लगभग कोई 20% से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।
वास्तविक आंकड़े हैं वो हम श्रोताओं के समक्ष रख देते हैं। श्रोताओं, इस अवधि में यानी 17 मार्च तक जो अग्रिम कर एडवांस टैक्स जिसकी बात हमारे विशेषज्ञ कर रहे हैं, वह 9,11,000 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 22% अधिक है। साथ ही यदि हम कॉरपोरेट टैक्स की बात करें तो कॉरपोरेट टैक्स भी 9,14,000 करोड़ रुपए रहा है इस अवधि में, जबकि व्यक्तिगत आयकर 9,72,000 करोड़ रुपए संग्रहित हुआ है। यहाँ पर हम एक बार फिर डॉक्टर शर्मा आपसे समझना चाहेंगे कि कुल मिलाकर हम ये मान के चले कि सरकार की जो मशीनरी है या मैकेनिज्म है, जो प्रक्रिया है, वह सरलीकृत हुई है, जिसके चलते जो कराधान है वो बढ़ रहा है, कर का आधार भी बढ़ रहा है, या लोगों की आमदनी बढ़ रही है, देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, या दोनों ही कारक इसमें सम्मिलित हैं?
जी, इसमें दोनों ही कारक इसमें सम्मिलित हैं। अगर टैक्स अगर खाली सिंप्लिसिटी होगा या सरलता होगी टैक्स भरने में, या रूल्स को बहुत सिंपल कर दिया जाएगा, या फिर बहुत सारा इंसेंटिवाइज कर दिया जाएगा और लोगों को इनकम नहीं है फिर भी टैक्स नहीं बढ़ सकता है। टैक्स भी तभी बढ़ेगा जब लोगों को इनकम होगी और फिर वो सरलता से पे कर पाएंगे। और ये दोनों चीजें ही बहुत ही इंटरकनेक्टेड हैं कि एक तो सरलता होनी चाहिए, दूसरा लोगों का जो पेइंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो दोनों चीजें ही हुई है, जाके कई बार लाइन में लग के बहुत ज्यादा जब टैक्स के लास्ट डेट होते थे तो वहां पे बड़ा भारी जो आदमी को उद्यम करना पड़ता था। तो अभी तो ऑनलाइन सब सबमिशन हो गए हैं तो बहुत ही इजियर है मतलब टैक्स पेयर के लिए टैक्स पे करना, जिस वजह से एक जो हैसल है वो कम हो गया है, जिससे लोगों को कई बार क्या है कि टैक्स आदमी भरना चाहता है लेकिन उसके सामने कॉम्प्लिकेशन है कि उसको कहाँ पे जाना है, उसको पूरा ज्ञात नहीं है कि कहाँ पे जाके सबमिट करना है, कैसे इसका जो फाइनली जो रिटर्न है हार्ड कॉपी में सबमिट होते थे। तो सिंप्लिसिटी के साथ साथ अभी जो सरलता और ये सब चीजें हुई है उससे भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला है जो इतने जोरदार जो हम टैक्स कलेक्शन देख रहे हैं हर एक साल में, खास करके जो 2021 के बाद जो एक बहुत ही डिफिकल्ट ईयर था जिसमें कोरोना ने पूरे संसार को झिंझोड़ के रखा था, जिसमें कि ग्रोथ रेट बहुत डिसिलेरेट हुए, उसके बाद तो निरंतर जो टैक्सेस में बढ़ोतरी हुई है 21-22 में बहुत तेज गति से जो टैक्स कलेक्शन है बढ़े हैं और 22-23 में और फिर 23-24 के अनुमान अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो भी लगभग कोई 20% से टैक्स इंक्रीज होना और वो भी एक हाई बेस के ऊपर बहुत बड़ी बात है कि वाकई ही जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ही जो फंडामेंटल्स है उनसे पता चलता है कि चीजें जो टैक्सेस के साथ कितना जो है विजिबल है चीजें, मतलब दोनों चीजें कनेक्टेड है, एक तो टैक्स बेस बढ़ना, दूसरा इकोनॉमी की रफ्तार इतनी तेज गति से आगे बढ़ना। तो मान लीजिए इकोनॉमी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है और हम देखें कि टैक्स जो कलेक्शन है वो बहुत तेज गति से नहीं बढ़ रहे या फिर थोड़ा लैकलस्टर ट्रैजेक्टरी में है, तब भी प्रतीत होता है कि शायद इकोनॉमी की रफ्तार जो है वो रियल उसमें नहीं है। लेकिन अभी जब सब चीजें जैसे हमने जीएसटी कलेक्शन भी हम देख रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन भी बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं, लगभग कोई उनमें भी वाई अगर हम इस साल का देखें फरवरी तक का तो 12.5% का तो जीएसटी में भी बढ़ोतरी हुई है। 2021 को छोड़ के जब थोड़ा सा माइनस में जीएसटी रहा था लगभग कुछ 7% से, उसके बाद 21-22 में 23-24% से ग्रो किया और 22-23 में 18% से ग्रो किया जीएसटी भी। तो कुल मिला के जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनमें बहुत तेज गति देखी गई है। ओवरऑल जो टैक्सेशन जो हमारे टैक्स रेवेन्यू है उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी है, जिस वजह से हमारा जो ओवरऑल सिनेरियो है खास करके जो फिस्कल डेफिसिट जो हमने देखा था कि एक कोरोना के पीरियड में जब हम बहुत ही डिसलिडेटिंग ट्रैजेक्टरी में थे, हमारा फिस्कल डेफिसिट भी 9% के उसमें पहुंच गया था, तो वो कम होके अभी जैसे हमारे अनुमान है जो इस वर्ष में जो रहेगा 5.1% का जो प्रोजेक्शन दिया गया है तो वो बहुत ही एक अपवर्ड और एक प्रोग्रेसिव और एक प्रॉमिसिंग नंबर है जो आगे हम अगले वर्ष में जाके 4.5% का हम फिस्कल डेफिसिट लेके आएंगे। तो ये सब इसी की वजह से है कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है, जो टैक्सेशन है, जो टैक्स प्रणाली है वो बहुत सरल हुई है और जो कलेक्शन है वो निरंतर बढ़ रही है।
श्रोताओं, हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कर प्रणाली सुचारू हुई है, सरल हुई है और लोगों का कर जमा करना भी बढ़ा है। यहाँ पर एक उल्लेखनीय जानकारी जो हम आपको देना चाहते हैं वो ये कि 17 मार्च तक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 3,36,808 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए हैं। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.74% अधिक है। डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर फिर एक उल्लेखनीय तथ्य है, पहले जो लोग कर जमा करते थे उसके बाद रिफंड लेने में बहुत अधिक समय लगता था, अब रिफंड की क्या स्थिति है और ये जो ताजा आंकड़े हैं उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप?
जी बिल्कुल, रिफंड का अगर हम देखें तो वाईओवाई में लगभग कोई 12% से भी ऊपर का ग्रोथ आया है कि रिफंड बहुत इंक्रीज हुए हैं। जो पहले का समय था इसी ट्रैजेक्टरी में अगर हम देखें तो पिछले वर्ष ये 2,98,000 करोड़ थे, अभी 3,36,000 करोड़ का जो है रिफंड उल्लेख किया गया है। तो इसके पीछे एक तो रिफंड प्रक्रिया का बहुत सरल होना और दूसरा जो रिफंड है वो विद इन 3-4 डेज, 5 डेज, 7 डेज के बीच में भी लोगों को अकाउंट में दिखता है कि उनका रिफंड जो है वापस आ गया है। कुल मिला के देखा जाए तो जो रिफंड प्रक्रिया भी बहुत सुदृढ़ हुई है और जो एडवांस टैक्स कलेक्शन है उनमें हम देख रहे हैं आना वाला जो ट्रैजेक्टरी है, जो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है वो भी बहुत इंटैक्ट है, जिससे जो कि हमें एडवांस टैक्स से पता चलता है कि लोगों का जो ऑर्डर बुक्स हैं, जो लोगों के आगे एक्सपेंशन हैं, जो लोगों के आगे डे टू डे एक्टिविटीज है वो एकदम से निरंतर है। कुल मिला के प्रणाली है उसकी वजह से ही ये सब कुछ,
यानी इसे हम संतोषजनक उपलब्धि कह सकते हैं देशवासियों के लिए। बस यही
बिल्कुल जो कि नंबर्स भी दर्शाते हैं, जिससे हमें साफ तौर पे पता चलता है कि जो सिस्टम है बहुत सरल हुआ है, जिसकी वजह से जो नंबर्स हैं वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।
जी, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
जी शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे चालू वित्त वर्ष के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह में बढ़ोतरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक SP शर्मा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।